ने कहा इससे पूछा ये तू क्या करेगा, पलक झपकते ही सबको समाप्त कर दूंगा। कृष्ण कहा कैसे करेगा, जरा प्रभाव दिखलाओ तो कैसे करेगा। उसने एक बाण उठाया, एक घास तीन मैंने दुर्गा घास होती है दूध की, उसको लिया और उसको टेढ़ा कर दिया और उस पर एक दुर्गा घास चढ़ा दिया, आंख बंद किया और ऐसे खींचा उसे और उसे एक फूल लिया, उस फूल के अंत में रंग लगा दिया कुछ गुलाल रंग या कुछ, और जब छोड़ा उसको एक मिनट झपते देखा जो विश्व के जितने वीर हैं और वहां पर उपस्थित दोनों तरफ में थे सबके कलेजे में वो फूल लगा, उसका रंग लग गया। देखो ये मैं ये तो रंग से दिखलाया मैंने, ये तो अभिनय मैंने किया, किंतु इसी बाण को यदि उठाऊं तो दोनों तरफ के समस्त वीरों को समाप्त करूंगा, बस महाभारत देख के कंडे नहीं लगेगा। कृष्ण ने कहा ये तो बड़ा भारी दुष्ट है, तो कोई लीला ही नहीं होने देगा। पश्चात सुदर्शन से उसका सीट काट रहे, काटने पर कहा प्रभु आपने हमारा सिर क्यों काट दिया, मैंने क्या अन्याय किया, तो तू नहीं समझेगा जो तूने क्या अन्याय किया, तो प्रभु आप जैसे हुआ वैसा कीजिए, हमको एक ऊंचे स्थान पर रख दीजिए हमारा सिर, मैं ये युद्ध देखना चाहता हूँ कि कौन कैसे कैसे वीर है, हमारे समान कोई है कि नहीं, मैं जानता हूँ कि कोई हमारे समान नहीं, जब भी है तो आप ही हैं, मैं युद्ध को देखना चाहता हूँ, बस एक ऊंचे टीले पर उसका सिर रख दिया। महाभारत युद्ध समाप्त हो गया पूरा, दोनों तरफ के सब वीर मारे गए, द्रौपदी के पांच शिशु भी मर गए, दुष्यदुम्न इत्यादि मारे गए, दुर्योधन के वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं रह गया, उसके तरफ के सब खत्म, उसके तरफ में केवल तीन आदमी बचे, एक अश्वत्थामा कृपाचार्य जी और एक कोई शकुनी या कौन बचा था, शकुनी नहीं एक और कोई बचा, और इनके तरफ में
पांच पांडव बचे बस और कृष्ण बचे
और कोई नहीं बचा। उस समय में जब युद्ध समाप्त हो गया तो कृष्ण ने कहा कि अच्छा भाई ये युद्ध को किसने जय किया, अर्जुन ने कहा ये मैंने, मैं नहीं रहता तो भीष्म पितामह द्रोण कर्ण इत्यादि को कौन मारता, और इन्हीं को मारने के वजह से सब लोग हार, नहीं तो कोई नहीं जीतता। भीम ने कहा जे डीग मत ठाको, मैं यदि जो दौधन का ये जंघा नहीं तोड़ता, दुशासन का खून नहीं पीता, रजत वाला द्रौपदी के प्रतिज्ञा को उनके रक्तों से उसका केश नहीं बांधता, तू अकेले क्या तू ही जड़ा आधा पुरुष और आधा नारी, तू क्या करता। अर्जुन ने कहा क्या मैं नहीं किया, बस धनुष ऐसे तो देखे, तुम अपने गदा ले करके आ जाओ। दोनों मैदान में उतर गए, कृष्ण ने कहा ठहरो ठहरो ठहरो, बर्बरी के यहां गए, चलो बर्बरी को वहां सिर रखा, पूछा जी भाई इस युद्ध में किसने ये युद्ध को जीता। उन्होंने कहा हमने तो देखा जी प्रारंभ से और अंत तक सब कुछ देखा, और दिया ही देखा है केवल आपने ही युद्ध किया और आप ही जीते। और अर्जुन भूम और भीष्म पितामह इत्यादि जितने थे वो कठपुतली की तरफ में नाच रहे थे। तब उन्होंने कहा उनका अभिमान सब कुछ दूर हो गया, उनका सिर नीचा हो गया। भीष्म पितामह जी उसी को कह रहे हैं पांडवों से, देखो ये काल है, काल के द्वारा ये सब कुछ हुआ, किसी का दोष नहीं, न पांडवों का न दुर्योधन का, किसी का दोष नहीं, काल सब कुछ कराता है। इसलिए शत्रु मित्र अपने में मत समझो कि वो हमारा शत्रु है मैं उनका मित्र हूँ। भागवत सुनकर के यदि ये विचार आया, जो हमारा कर्म ही या काल सब कुछ करा रहा है, हमारा कोई दूसरा शत्रु और कोई मित्र नहीं है, ये भागवत श्रवण का समय। और चित्त को शुद्ध करके शत्रु मित्र सबसे दूर रख करके वही श्री कृष्ण जो सभी कुछ करने वाले वही कराने वाले हैं, बस उनका स्मरण करो, उनकी लीलाओं का स्मरण करो, सब कुछ अपने आप सब कुछ हो जाएगा। और यदि चित्त ही चंचल रहा भागवत को सुनने से, न जाने क्या होगा, ये क्या होगा, ये दुख आ रहा है, विपत्ति आ रही, तो भागवत सुनना चाहिए। इसलिए ऐसे चित्त को स्थिर करके भगवान की कथाओं को सुनो, ये सब को दूर करके और तब आज ही तक रहे। शाम को 4 बजे से पुनः भागवत आरंभ होगा, 21 तारीख तक ऐसा ही प्रोग्राम चलेगा। आप लोग जितने आदमी हैं देख करके बड़ी खुशी हुई, सब लोग आए हुए, अब इसमें आदमियों की कमी न हो, बल्कि आप लोग एक एक आदमी दो दो व्यक्तियों को साथ में लाने की चेष्टा करेंगे और करेंगी, तब तो ये भागवत का सुनना हुआ। और एक बात सावधान करता हूँ भाई, कली जैसे हनुमान जी, नारद जी और सब ऋषि महर्षि सब इसमें आते हैं, किसी किसी न किसी रूप में आते हैं, मनुष्यों का रूप धारण करके ऐसे मालूम होता है जो हम चिन्हते किंतु कोई चिन्हेगा नहीं, वो उसमें आए हुए हैं। ऐसे इसमें कली भी आता है और अपने बेटे और लड़कियों को स्त्री को लेकर के आता है। जम्भाई ये क्या है, निद है, ये उसकी लड़कियां हैं, प्यारी बेटियां हैं। पहले जम्भाई आएगी और उसके बाद वो जब जम्भाई धक दबोचेगी तो निद्रा देवी आकर के तुम्हारे आंखों पर चढ़ जाएंगी, 1 करोड़ मन का पत्थर लेकर के आंखों पर, उठने नहीं देगी। क्यों? काल ऐसा इसलिए कराता है, जो लोग इस कथा में सुने, जो सुनेंगे तो भव सागर से पार हो जाएंगे, और जो नहीं सुनेगा सो जाएंगे, उनका भागवत सुनने का फल हमको मिल जाएगा, उनको नहीं मिलेगा। तो जो सोएगा तो उसका फल कली को मिल जाएगा और वो चले जाएगा, और बाकी जो सोएंगे सब लोगों का पाप लेकर के वो रह जाएंगे, उनका भागवत सुनना नहीं है। इस तरह से सावधानी के साथ में आप लोग सुनेंगे। अभी कीर्तन के साथ में हम लोग भागवत की आरती करेंगे, इसके बाद में आप लोग कुर्सी इत्यादि कुछ प्रसाद लेकर के जाएंगे, फिर शाम को आएंगे। गौर प्रमाण
श्रीमद् भागवत को सुनते और वैसे रही कोई भी उसमें निचोड़ने लायक कोई, फेंकने लायक कोई चीज नहीं, ऐसा रस में विशेष करके सुखदेव गोस्वामी के द्वारा स्पर्श किया हुआ। सुखदेव गोस्वामी तो अपने आप कहा है कि मैं निर्गुण में प्रतिष्ठित था, निर्गुण ब्रह्म में मैं प्रतिष्ठित था, किंतु मेरे पिताजी ने कृपा करके हमको बन से बुलाकर और श्रीमद् भागवत की रसमय कथाओं में हमें लगा दिया है। बड़ी उनकी कृपा। सुखदेव गोस्वामी जी के दो स्वरूप हैं। पहला स्वरूप वो उनको बैठने दे, आप चले भीतर उनको बैठने दे। एक स्वरूप है वो अपने नित्य स्वरूप में प्रिया जी के बड़े प्यारे सुख पक्षी शुभानंद जी ने बतलाया, चले संक्षेप में बतलाया। किंतु इस लीला में श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन मिलता है, जन्म लेते ही वो घर से निकल गए और पिताजी उनको हा पुत्र कर रहे हैं और वो उत्तर नहीं दे रहे हैं, उनके बदले में प्रतिध्वनि हो रही है हा पुत्र कौन किसका पुत्र, कौन किसकी मैया, कौन किसका बाप, कौन किसका बेटा। यथार्थ में हमारे भी दो स्वरूप हैं। ये ऊपर से एक हाड़ चाम मांस का अभी दिख रहा है, कोई स्त्री कोई पुरुष कोई बाप कोई बेटा कोई ये सब दिख रहा है, पंच भौतिक शरीर ये देख रहा है, हम ये नहीं है। ये एक कपड़ा ऊपर से उड़ा दिया गया, भीतर में हम लोग स्वरूपतः कृष्ण के दास दासी हैं, किंतु अभी हमें प्रतीति नहीं हो रहा। इसी वजह से ये हमारे पिता हैं, ये मेरी मैया है, ये हमारे पति हैं, ये इसकी स्त्री है, इसलिए परस्पर स्वार्थ से हम जड़े हैं, भगवान से कोई संबंध नहीं दिख पड़ता। किंतु असल में हम लोग सभी गोलोक वैकुंठ धाम के रहने वाले, इस जगत में अपने दोस्तों के कारण जी भगवान को भूल गए और इस जगत में पचड़े में पड़ गए, और जितने जितने निकलने की चेष्टा करते हैं उतने ही दलदल में हाथी की तरह में और भीतर फंसते चले जाते हैं और अपने को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं इस दलदल के फंसने में। तो सुखदेव गोस्वामी यथार्थ में स्वरूपतः वो श्रीमती राधिका के बड़े प्रिय सुख थे। जब कृष्ण की और राधा इत्यादि जी की वृंदावन की लीला चल रही थी, एक समय श्रीमती जी बरसाने में थी, अपने सूप को अपने हाथ पर लेकर बैठा रखी थी बाएं हाथ पर, और उसको अनार के दाने को सुंदर सुंदर रसमयी मीठे मीठे अनार के दाने को खिला रही। कभी किसी दिन चावल और दूध, अच्छे बारीक सुंदर चावल सुगंधित और खीर बना दिया था, उसके एक एक दाने उसके मुख में दिए और कातिया ये सूप पढ़ो, कृष्ण कृष्ण सूप पक्षी किसी की नकल करने में बड़ा तेज होता है और जिसका जैसा गला रहेगा वैसे ही बोलेगा। जैसे श्रीमती जी ने बड़े मधुर कोमल स्वर से कृष्ण कृष्ण उच्चारण किया, सुख पक्षी जी मैंने ठीक वैसे ही मधुर बोली से राधिका जी के वचनों को ठीक अनुकरण करके और ठीक वैसे ही बोली में बोला, कृष्ण कृष्ण जब कहा तो राधा जी बड़ी प्रसन्न हो गई। ऐसे ही उसको पढ़ाया करती, घोषणा करती। एक दिन पक्षी के स्वभाव के चांचल्य के कारण उनके हाथों से उड़ गया और उड़ करके सुंदर बाग बगीचे से युक्त नंदगांव की तरफ में चला। बड़ी हरियाली यहाँ नंदगांव में, हरियाली से आकृष्ट होकर के जब यहाँ आया तो देखा जी मधुमंगल और कृष्ण एक उपवन में नंद बाग में परस्पर विनोद कर रहे हैं। ये एक तमाल वृक्ष के ऊपर में बैठ गया, ये लोग खेल रहे थे, परस्पर बातें कर रहे थे। इतने में उसने कृष्ण 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 किया, चौंक गए कृष्ण, ये राधा कहां से बोल रही है। चारों तरफ में राधा को खोजने लगे, राधा जी के शब्दों का अनुकरण करके वैसी ही मीठी बोली मधुर में बोल रहा था। राधा जी कहां है चारों तरफ खोजने लगे, किंतु राधा जी दिखाई नहीं पड़ी। तमाल वृक्ष से जब वो फिर शब्द आया तो उन्होंने देखा एक सुख पक्षी राधे राधे का कृष्ण कृष्ण बड़ी आकृष्ट हो गए। इतने में वो कहता है पक्षी थी खूब सुंदर एक गान के संगीत के रूप में एक श्लोक का उच्चारण किया। ओ मेरा जैसा सौभाग्यवान कोई नहीं था, मैं श्रीमती जी के हाथों पर मैं खेलता था, बड़ी लाड़ प्यार से मुझे खिलाती पिलाती थी, किंतु मैं महा कृतज्ञ अकृतज्ञ हूं, उस प्यार का कोई बदला नहीं दिया। मैं उनके हाथों से उड़ करके पक्षी के स्वाभाविक चांचल्य वशतः मैं उड़ करके इस घर में आ पड़ा, किंतु मेरा कितना दुर्भाग्य है मैं राधा जी के हाथों से यहाँ चला है, जहाँ उनके हाथों पर मैं खाता था सब कुछ, इसलिए मैं बड़ा दुखी हूँ। कृष्ण ने सुन करके उसकी कोमल और रोते हुए उसकी बातों को सुन करके बड़ी प्रभावित, उन्होंने बड़े बड़े प्यार से उस सुख को बुलाया। बुलाते हैं वो उनके हाथों पर उठ करके चलाया और उनके बाएं हाथ पर वो बैठ गया। मधुमंगल से उन्होंने अनार का दाना लिया और उसको खिलाने लगे। बोलो तो तुमने क्या कहा था, तो उसने कहना था कृष्ण कृष्ण, और फिर वही मैं महा दुर्भागा श्रीमती जी के हाथों से उड़ करके और पक्षी के चांचल्य वशतः में यहाँ आ गया, मेरा जैसा और कोई दुर्भागा व्यक्ति नहीं। कृष्ण सुन करके पढ़े, बार बार उसे पढ़ाने लगे और फिर उसको पढ़ाने लगे राधे राधे, जो कहो तो तुम राधे राधे। कृष्ण के स्वर से अब कृष्ण का स्वर नकल कर लिया और राधे राधे का, अब बड़े प्रसन्न हो गए और उसे खेलने लग गए। इतने में दो सहेलियां वो एक श्रीमती जी की प्रधान सहेली ललिता जी, दूसरी विशाखा आ करके बोली कृष्ण ये तो हमारी प्रिया जी का ये सुख है, उसके बिना एक मिनट नहीं वो जीवित रह सकता। तुम इस सुख को दे दो, उसके लिए बड़ी चिंतित हो रही है। तुम इस सुख को लौटा दो। और ये किसका सुख है? तो श्रीमती जी का है, तो तुम ले जाओ, तुम बुला लो, यदि तुम्हारे बुलाने से आ जाता है तो ले जाओ। तो उन्होंने चेष्टा की बुलाने की, तू आया नहीं। तो उन्होंने कहा जी आप जिसको रखें और जिसको स्नेह करें वो भला कहीं जा सकता है, वो कहीं नहीं जा सकता। तो हाँ देखो तुम अपनी श्रीमती जी को बुला लाओ और वो जब इसको ले जाते वो ले जा सकती हैं, वही श्रीमती जी यहाँ नहीं आती। कृष्ण ने किसी प्रकार से जब नहीं लौटाया तो वो लौट करके यशोदा मैया के पास में गई और मैया से उलाहना दिया, ये हमारी प्रिया जी का सुख इसने पकड़ लिया और ये दे नहीं रहा। कहिया अच्छा ऐसे तुम बैठो मैं भी आती, ये कह करके गई और झट वहां पर पहुंच करके जहां पर कृष्ण और वो विनोद कर रहे थे उससे राधे राधे इत्यादि बुलवा रहे थे। उन्होंने जाकर के झपट्टा मार करके और उसे ले लिया सुख। कहा जी तुम बड़े गंदे लड़के, कभी पशुओं से कभी पक्षियों से कभी किसी में और उसी में तुम लगे रहते हो, खाने पीने का समय हो गया तुमको याद नहीं। और दोनों को हाथ पकड़ करके जबरदस्ती उठा लिया और उठा करके उनको खींचते हुए घर में लेने आए। ये लोग कुछ न कर सके, इनकी धरी रह गई सब योजना। इसके बाद में घर में ले आई और कृष्ण को आज अभी स्नान करो और लगा दिया सेवकों को उनके स्नान करने में और सुख पक्षी को लेकर के और सखियों को दे दिया और सखियां लेकर यशोदा माँ के आगे उनकी एक भी नहीं चलती है, यही भक्ति है। ऐसी भक्ति भगवान के प्रति करना पड़े, करना हम लोग चाहिए, जिससे कि कृष्ण भी उस प्रेम के द्वारा वशीभूत हो जाए। वो परब्रह्म है सबके, सब ईश्वरों के ईश्वर हैं, किंतु प्रेम के में वशीभूत हो जाए। इस प्रकार से तो उसे चला गया। इसके बाद में जब लीला समाप्ति हो गई, कृष्ण अंतर ध्यान होने लगे, श्रीमती राधिका इत्यादि जी ब्रज की लीला को समाप्त किया और द्वारका लीला भी समाप्त हो गई, तो उस समय में सभी लोग कृष्ण चले आए गोकुल में। वो किसको दंत वक्र को मारने के बहाने मारा और गोकुल में गए। और उस समय में सब जितने उनके परिकर थे उनके साथ में कुछ दिन रह करके और सबको लेकर के नंद बाबा यशोदा श्रीमती राधिका ललिता विशाखा और जितने ब्रजवासी से सब लोग को लेकर के गोलोक एकदम वृंदावन में चले गए और अपना मथुरा और द्वारका का जो स्वरूप है उससे वो द्वारका की तरफ में चले गए। किसी को ये पता नहीं चला, किंतु सुख को आदेश दिया हम लोग तो जा रहे हैं, तुम मत जाना। जैसे रामचंद्र जी चले गए तो उन्होंने आदेश दिया हनुमान को जे तुम इस पृथ्वी पर रहना और जो लोग भगवान को भूल जाते हैं उनके लिए जहां जहां लीलाएं होंगी हमारी कथाएं होंगी वहां पर तुम सब इसका प्रचार करना, इसके लिए तुमको रहना पड़ेगा। उसी प्रकार से इनको आदेश दिया, इनको आदेश दिया था और सुख उद्धव जी को हमारे जाने के बाद भी तुम लोग रहना। इसलिए सुख जो थे वो रोने लगे, आप लोगों को छोड़ करके मैं नहीं रह सकता, मैं कैसे रहूंगा। कृष्ण का आदेश था, श्रीमती का आदेश था, हम लोगों के जाने के बाद में सभी कुछ नष्ट हो जाएगा। तुम रहेगा तो फिर ये श्रीमद भागवत रूपी पुराण सूर्य को तुम प्रकाश करेगा और उसे संसार का कल्याण होगा। इस कल्याण के लिए तुमको यहाँ रहना है, हमारी सेवा करना है। कह करके तो वो लोग चले गए। ये विरह में तड़पते हुए राधा कृष्ण की कथाओं को सुनने के लिए इधर उधर भटकने, इसके बाद में वो चले गए कैलाश में। शंकर जी परम भक्त है, वही श्रीमद भागवत की कथा वो उनसे कह रहे थे पार्वती। इसके बाद की जो कथा है आपको ब्रह्मचारी जी ने ये सब बतलाया। वो पेड़ पर बैठ गए और हुंकारी भरने लगे। पार्वती जी सो गई। कुछ स्त्रियों का स्वभाव है या क्यों उन्होंने व्यास जी ने लिख दिया मुझे ठीक पता नहीं चलता, उन्होंने क्या पक्षपात किया है। व्यास जी ने पुरुषों के प्रति ये पक्षपात किया जो वो सो गई, विशेष करके सो गई। अभी ये प्रसंग आ रहा है सृष्टि का, तब तो ज्ञानी तो इसमें जगेंगे और बाकी जो साधारण रूप में देखा जाता है जिनका तत्व में खूब प्रवेश नहीं है तो इसमें सो जाते हैं। आप लोग मत सोएंगे क्योंकि उन्होंने दिखला है उसे वंचित रह गई कथा से, इसलिए वो तो सो गई और ये हुंकारी भक्त रहे। अंत में जब उनकी नींद खुली फिर उन्होंने कहा जैसे हमको फिर से सुनाइए। तो ये कौन सुना? अनाधिकारी व्यक्ति। अनाधिकारी व्यक्ति इसको नहीं श्रवण करे। अनाधिकारी कौन है? देह में जो आत्मा की बुद्धि रखता है, मैं ये शरीर हूँ और संसार के कामों में फंसा रहता है, वो लोग अनाधिकारी। तो आप लोग कहेंगे जैसे हमको क्यों सुनाया जा रहा है? इसलिए कि अधिकारी बनाया जाए। संसार की चीजों को उसमें फंसने के लिए ये नहीं सुनाया जा रहा, आप लोग भी उसके अधिकारी हो। और इसमें बहुत से अधिकारी हैं, क्वचित दो एक कोई होगा। अंततः ये जानते हैं सभी ये हमारा जड़ शरीर है, मैं ये नहीं जानते। इसलिए संसारिक चीजों से कुछ भी लाभ नहीं होगा, इसलिए इसके अधिकारी वो हैं जिनको भागवत की कथाओं में कुछ श्रद्धा है, वो लोग इसके अधिकारी हैं। और बाकी लोग अनाधिकारी, अधिकारी नो मत अनाधिकारी। तो उन्होंने कहा कि इसको मारेंगे अनाधिकारी, एक सुख पक्षी हो करके और सुन लिया। तो उन्होंने त्रिशूल उठाया उड़ करके वो चले गए व्यास आश्रम बद्रिकाश्रम में। वहां पर व्यास जी अपनी पत्नी बीटिका से यही कथा भागवत कथा कह रहे हैं। बस वो सुन रही थी, आश्चर्यचकित होकर के वह उनके मुख में प्रवेश कर गई और 12 वर्ष या 16 वर्ष कहते हैं वहां पेट में रहे। तो कैसे कृष्ण आए उनको निकाला और फिर उनको आदेश दिया, उनका नाम भी सुख रखा और भागवत को कहने के लिए उनको आती। ये सब कथाएं आप लोग सुन चुके हैं। भगवान की लीलाएं दो प्रकार की होती है, एक होता है नित्य लीला, दूसरी होती है संसारी सृष्टि इत्यादि की लीलाएं। ये दोनों लीलाएं ठीक है अपने अपने स्थान पर, किंतु हमको इस अनित्य लीलाओं से नैमित्तिक लीलाओं से ऊपर उठ करके भगवान की नित्य लीलाओं में प्रवेश करना पड़ेगा। कृष्ण का बाल्य चरित्र जहाँ से आरंभ हुआ है वहाँ से वो सब जितनी है नित्य लीलाएं, उसमें कंस मारण है, असुरों का मारना है, ये सब कुछ कुछ उसमें अनित्य लीलाओं का उसमें कुछ कुछ थोड़ा सा प्रवेश है, किंतु उसका भी गोलोक वैकुंठ धाम में कुछ न कुछ जरूर भाव है। यहाँ पर कंस की मूर्ति होती है, वहाँ पर कंस का केवल भाव होता, नित्य लीला नहीं हो सकती है। इन सब चीजों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। इस तरह से और दूसरी होता है सृष्टि, ये कैसे सृष्टि होता है ये प्राकृत, और कैसे ब्रह्मा जी रजोगुण के द्वारा इसको पैदा करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शंकर जी इसको ध्वंस करते हैं, और कैसे उनका कल्याण करते हैं, इस सब कथाओं का ये दूसरे अध्याय दूसरे स्कंद में इसका वर्णन होगा, आप लोग सुनेंगे। ये सब है भूमिका, हमारे हृदय रूपी प्लेटफॉर्म को संस्कार करना है। ये सब नहीं समझने से तीसरा स्कंद नहीं समझ में आएगा, तीसरा स्कंद यदि नहीं पढ़ेंगे तो चौथा नहीं आएगा, चौथा नहीं आएगा तो पांचवा नहीं आएगा। जिसने प्रथम सीढ़ी पर ही पैर नहीं दिया वो अंतिम सीढ़ी पर कैसे पैर दे सकता है। इसलिए नौ स्कंद को अच्छी तरह से समझो तो दशम को समझ सकते हो, अन्यथा नहीं समझ सकते। और दशम के हो जाने के बाद में कैसे हम उसमें प्रवेश कर सकते हैं, ये एकादश और द्वादश में ये सब चीजें बतलाई गई है। धीरे धीरे हम लोग इसका वर्णन करेंगे। अब कथा आरंभ हो रही है, आप लोग सुनो। गौ प्रमाण देव कर्दम जी का और विभूति और कपिल जी जी का आपने संवाद, उन्होंने उसमें बताया हम लोगों के जन्म और मरण का जो दुख है अभी हमें स्मरण नहीं हुआ। बहुत ही कष्ट होता है जन्म में और मरण में, भगवान ने इसको अपनी माया से ऐसे भुला दिया है, यदि वो याद रहती तो कोई भी जन्म लेना नहीं चाहता। उन्होंने बतलाया कि गर्भ में कैसे जीव आता है, माता पिता के संपर्क पहले तो जीवात्मा जो मर जाती है वो आकाश में चली जाती है, बादल के मेघों के से जो पानी बरसता है उसके साथ में फिर यहाँ कैसे वृक्षों में मनुष्यों में वो सब जाता है, रस के साथ वो प्रवेश करता है, मनुष्य कुछ खाता है, स्त्रियां खाती हैं, पुरुष खाता है, जानवरों के भी, पशुओं के, पक्षियों को भी, जोड़े मादे सब खाते हैं, और परस्पर मिलने के बाद वो कैसे हृदय में पहुंचता है, किस प्रकार से कितने दिनों में वो पूरा होता है, 9-10 महीने के बाद में तब से वो एकदम पीप रक्त और ये सब में सन जाता है, एकदम उसे बांध देते हैं और उसमें वो सांस नहीं ले पाता, कीड़े काटते हैं, माता कोई भी तरह तरह की कटु चीजों को खाती है, उसको वो भोग करता है, भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु इस नरक से हमको निकालिए। सभी जीवों के लिए ऐसा हुआ है, उसमें कोई कोई सौभाग्यवान जीव जब अत्यंत उनकी आराधना करता है उस समय प्रार्थना करता है तो भगवान उनको क्षण मात्र के लिए दर्शन, वो कहता है कि प्रभु इस बार हमको इस नर्क से निकालिए, मैं आपको कभी भूलूंगा नहीं, जीवन भर भजन करूंगा, अच्छी ठीक है याद रखना। इसके बाद उसका जन्म होता है, जन्म होते ही मैया की गोदी में आया, पूर्व जन्म की बातें तो याद रहती हैं, होता है इसके बाद में बहन के और सब माताओं की गोदी में जाकर के उस चीज को भूल जाता है और फिर किस प्रकार से जीवन आरंभ होता है, बाल्य जौवन चला जाता है, बाल्यकाल चला गया खेलने में, करीब करीब 25 वर्ष तक उसको किसी बात के लिए शिक्षा करने में लगी। 25 वर्ष तक उसने शिक्षा इत्यादि ग्रहण किया और इसके बाद में फिर विवाह शादी करके फिर संसार में मुक्त हो जाता। 50 वर्ष या बाद में आयु ढलने लगती, कुछ भी सुख नहीं मिला। 50 वर्ष में या 100 वर्ष की यदि आयु रखी जाए उसमें से 50 वर्ष सोने में चला गया, बचपन में चला गया और जौवन काल तक ये खेलने कूदने और पढ़ने लिखने में ये 25 वर्ष, तो ये 20 वर्ष ही मान लिया के रख दिया है। औसत जरक वृद्धावस्था में 80 से लेकर के 100 वर्ष, वो 20, 20, 40 और 50, 90 वर्ष ये चला गया। और जो 10 वर्ष बचा इसमें विवाह शादी करने में, बच्चों को पालन पोषण करने में, घर इत्यादि बनाने में उसके लग गए, भगवान का भजन सब किया और फिर वो सब कुछ भूल करके फिर उसी नरक में चला जाता है। इसलिए शिक्षा देते हैं कपिलदेव जी माँ मैया को, मैया ये सबसे उपरस्थ होकर के भगवान के भजन में लगाओ। ये संसार ऊपर से दिखता है बड़ा सुहावना, किंतु सुहावना नहीं है, इसके भीतर में आग जल रही है। सभी अनुभव करते हैं, माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो समझते हैं कि ये संसार क्या है, किंतु अपने बच्चों को ये नहीं कहते कि तू भगवान का भजन कर। सिनेमा जाएंगे, बायोस्कोप में जाएंगे, गंदे उनके विचार होंगे, सब कुछ करेंगे, उनके लिए कुछ नहीं कहेंगे। और यदि भगवान की कथा सुनने के लिए आया, अरे इसका तो जीव बस बिगड़ गया, साधुओं का संग करने लगा या करने लगी, बस सभी लोग यहाँ तक कि समाज के कुत्ते भी उनके पीछे लग जाएंगे, अरे तू कहाँ जा रहा है, भगवान का भजन समझते हैं। जैसे हमने सारा जीवन दुख किया उसी तरह से ये भी दुख भोगे, इसलिए फिर उसकी शादी इत्यादि करा करके संसार में रमा करके और मरते समय यही सब देख सुन करके फिर वो जन्म मरण के चक्कर में। इसलिए हमारे इन्होंने कपिल देव जी ने देवदूत माता को बताया, मनुष्य जीवन का एकमात्र कर्तव्य है भगवान का भजन। इस कर्तव्य से विमुख यदि हो गया, विमुख हो गया, फिर उसे कोटि कोटि जन्मों तक उसको संसार में घूमना पड़ेगा। एक भिखारी था, भिक्षा मांगने के लिए चला, किसी नगर में गया, एक दरवाजा ढूंढ रहा था जो इसमें जाएंगे राधे राधे कहेंगे, कुछ भिक्षा मिल जाएगी। तो प्रवेश जब किया तो उसकी चार दीवारी 84 लाख मील की थी, उसमें प्रवेश कर गया। एक ही दरवाजा 3.5 हाथ ऊंचा और 1 हाथ आध हाथ जो बस इतना है, बस उसमें प्रवेश कर गया। हाथ में लड़कियां थी, अंधा व्यक्ति दीवार को पकड़ करके चल रहा, भिक्षा दे ही भिक्षा, राधे राधे करता हुआ या कोई और दूसरा भिक्षा भिक्षा करता हुआ चल रहा था। चलते चलते कोई आदमी नहीं मिला, भिक्षा मांगते 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 84 लाख वर्ष बीत गए। कल्पना करो जैसे इतनी उम्र थी उसकी, एक रूप अपना भाग गया। जब फिर घूमता 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 सोचा कि कहां मैं फंस गया, अब दरवाजा मिले तो इसे निकल जाऊं, दरवाजा मिल ही नहीं गया। अंत में लठिया टेकते टेकते जब दरवाजा निकट में आ गया तो उसके शरीर में कुछ खुजला, जिस हाथ को वो दीवार पर रख करके चल रहा था और एक हाथ से लठिया लिए हुए था, उसने एक हाथ में लठिया लेकर के दूसरे हाथ से जो दीवार पर रखा था वो खुजलाने लगा, और चलता रहा कि इतने वर्षों में यदि वो दरवाजा नहीं आया तो अभी थोड़े आ जाएगा। बस झट खुजलाते खुजलाते और दरवाजा पार हो गया और फिर गोली दिया और फिर उसको 84 लाख वर्ष घूमना पड़ेगा तब वो दरवाजा मिलेगा। इसी प्रकार से मनुष्य जन्म से पार होने के लिए, भव सागर से पार होने के लिए ये मनुष्य का जन्म दरवाजा है। इस मनुष्य के दरवाजे को पा करके ये संसार के ये खुजलाहट को मिटलाने के लिए, मिटाने के लिए यदि इसी में रम गए तो वो दरवाजा फिर पार हो जाएगा, फिर 84 लाख जन्म को घूमना पड़ेगा। इसलिए सावधान हुई है, ये जन्म केवल मात्र भगवान का भजन करने के लिए है और किसी काम के लिए। जो भजन करता है उसको खूब या करती है उसको उत्साह दीजिए और अपने भी भगवान का भजन। चोरी डकैती करने में परिश्रम लगता है किंतु भगवान के भजन में क्या परिश्रम है? खाओ पियो, भगवान का नाम करो, रात में करो दिन में करो, जैसे तैसे करो, नहीं मिलता है तो चट्टी फिरते समय भी भगवान का नाम कर लो, रात में दिन में। इस अवस्था में है, पैसा लगता नहीं, कुछ भी नहीं लगता। आप लोग एकत्रित हैं यहाँ पर हरिकथा में, कौन सा पैसा लग रहा है? एक पैसे की भी जरूरत नहीं है। इसी तरह से भगवान के नाम में, भगवान के भजन में कोई भी प्रयोजन नहीं। हे प्रभो, मैं आपका हूँ, मैं आपकी हूँ, बस ये कहने में क्या परिश्रम लगता है? फिर यदि झुका दिया भगवान के सामने, इसमें क्या परिश्रम लगता है? इसलिए भक्ति में कोई भी कष्ट नहीं है। झूठ बोलने में चिंता करनी पड़ती है कि मैं क्या कहूँ, जैसे फिर फंसने जाऊँ, किंतु भगवान के नाम में ये सब। इसलिए भगवान की भक्ति बड़ी सुलभ है, सहज है, सरल है, बिना परिश्रम के हो जाती है। इसलिए मनुष्य जन्म में ही होगा, देव लोक में भी नहीं होगा, कहीं भी नहीं। इसलिए बड़े सौभाग्य से मनुष्य जन्म मिला है, उसमें भी इंद्रियां सब ठीक हैं, आंखों से देखते हैं, पैर से चलते हैं, हाथ से करते हैं और इस शरीर में शक्ति है। साधुओं का कर्म हो गया, मथुरा में हम लोग जन्म लिया या कहीं दूसरे से दूसरी जगह से विवाहित होकर के यहाँ आ गई या आ गए नौकरी करने के लिए यहाँ आ गए, मथुरा में वृंदावन में आप लोग आए और इसमें भी जन्म पा करके साधुओं का संग भी हो गया। यदि मनुष्य जन्म में आकर के भगवान का भजन करके तर नहीं गए तो हमको सब तक बात स्वीकार है और माया की खाई में। यही कपिल देव जी की कथा का ये सार है। इसलिए आप लोग भी ऐसे सोच करके भगवान का भजन करेंगे और सही भाव सागर से पार करेंगे। महामंत्र भक्त हरे कृष्णा हरे कृष्णा कल बतलाया गया कि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से सृष्टि की, वो स्वयं ही दो भागों में विभक्त होकर के संभव मनु और शत्रु का के रूप में वो प्रकट हुई। उसके पहले अमैथुनी सृष्टि थी, मन से उन्होंने कहा और वो सृष्टि हुई जिसमें कि सनत सनंदन सनत कुमार नारद जी अगस्त ऋषि वशिष्ठ जी ऐसे ऐसे सब लोग जन्म ग्रहण किए, किंतु उनसे सृष्टि या मैथुनी सृष्टि नहीं आरंभ। तब उन्होंने मनुअर शत्रु उपाकर उसमें प्रगटित होकर और सृष्टि आरंभ कर रहे। तपस्या करने के बाद इन लोगों ने इन लोगों की संताने दी। फिर ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति हुए, उनकी कितनी कन्याएं हुई, उन कन्याओं में से उन्होंने किसको किसके साथ में सबकी शादी दी थी, ये सबका वर्णन किया। सबसे छोटी जो उनकी लड़की थी उसकी शादी शंकर जी से, बहुत से साल में उन्होंने चेष्टा की थी जो ये शादी न